الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. तो रमज़ान मुबारक के बाद ये हमारी पहली क्लास है दरस कुरान की, और ये चूंकि ख़वातीन वाली क्लास है जो कि पीर की सुबह को हुआ करती है, तो इस वाली क्लास के अंदर हम जो सूरत पढ़ रहे थे वो थी सूरह बनी इसराइल। रमज़ान मुबारक के दौरान हमने इस सिलसिले को मौकूफ किया हुआ था, रोका हुआ था, और सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की तफसीर जो हम मर्दों की क्लास में पढ़ रहे थे तो उसको रमज़ान मुबारक में जारी रखा था। तो सूरह बनी इसराइल जहाँ तक हमने रमज़ान मुबारक से पहले पढ़ ली थी, तो वहाँ से हम पढ़ना अब दोबारा शुरू कर रहे हैं। जो आयात चल रही थी अभी जो तिलावत की गई, आयत नंबर 34 और 35, तो ये मारुफुल कुरान जिल्द नंबर 5 से हम पढ़ रहे हैं। इनके इसका तर्जुमा पढ़ लिया था, खुलासा तफसीर भी हो गई थी और मारुफ मसाइल भी काफ़ी हो चुके थे, लेकिन थोड़ा सा रिकैप के लिए, रिवीजन के लिए, तकरार के लिए एक दफ़ा फिर आपके सामने तर्जुमा खुलासा तफसीर हम पढ़ लेते हैं, बल्कि मारफू मसाइल का भी इबारत एक दफ़ा पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंसान भूल जाता है और पता नहीं कितने लोग जो है वो नोट्स वगैरह बनाते हैं या जिन्होंने क्लास से पहले रिविजन करी होगी, तो फिर इंशाल्लाह याद आ गया होगा, लेकिन जाहिर है मसरूफियात सबकी अपनी होती हैं तो रिवीजन वगैरह करना कहाँ मुमकिन होता है। तो बहरहाल एक बार हम ही रिवाइज करवा के फिर उसको आगे बढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात में जो हुक्म दे रहे हैं ये नंबर के हिसाब से जो है ना वो बनता है नवा हुक्म, क्योंकि सूरह बनी इसराइल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरू की चंद इब्तदाई बातें इसरा और मेराज के बारे में बताई, और फिर जो है वो बनी इसराइल के ऊपर जो अल्लाह ताला के अजाब आए उनके बारे में बात बताई, फिर उसके बाद जो है ना वो अल्लाह ताला ने अपने अहकामात बताने शुरू किए। ठीक है, तो वो अहकामात जो हैं वो सबसे पहले तौहीद का हुक्म कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, फिर उसके बाद वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करने का हुक्म था, वो बिलवालिदैन एहसाना वो दूसरा हुक्म था। तीसरा हुक्म था सिले रहमी का, कि जो अल्लाह ताला ने रिश्तेदारियां बनाई हैं तो उनको जो है वो जोड़ करके रखो, उनको तोड़ के मत रखो, उनके साथ तोड़ के मत रखो, जोड़ के रखो। तो ये तीसरा हुक्म था हुस्ने मुआशरत सिले रहमी। चौथा हुक्म था कि तबजीर से बचो, फजूल खर्ची से बचना, तबजीर और फजूल खर्ची या इसराफ और तबजीर से बचना, ये चौथा हुक्म था। पांचवा था इक्तसाद में मियाना रवि, यानी जो इकोनॉमिकली जो है ना वो सही डिसीशंस लेना, और ना जो है वो बहुत ज्यादा कंजूसी करना और ना ही जो है वो बहुत ज्यादा खर्च कर देना के बाद में अफसोस करना पड़े, तो वो पांचवा हुक्म था मियाना रवि। ठीक है, छठा हुक्म था औलाद का कत्ल ना करो, औलाद को कत्ल ना करो, खशियत इमलाक यानी भूख के खौफ से कि ये खाएंगे कहाँ से और इनका कैसे जो है वो गुजारा चलेगा, तो इस खौफ से जो है ना उनको कत्ल मत करो। और जैसा कि आपको उम्मीद है कि इतना तो याद होगा ही कि जिस्मानी कत्ल के साथ साथ हमने रूहानी कत्ल की भी उसमें बड़ी तफसील से बात करी थी। फिर सातवां हुक्म था कि ला तकरबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ, यानी किसी ऐसे काम में मत पड़ो, किसी ऐसे माहौल के अंदर खुद मत जाओ और ना जो है वो अपनी औलादों को धक्का दो कि जो कि उनको जिना तक पहुंचा दें। ठीक है, तो वो सातवां हुक्म था। फिर आठवां हुक्म था कि किसी को नाहक कत्ल मत करो। ठीक है, वला तक्तुलु नफ्सा अल्लती हर्रम अल्लाह इल्ला बिल हक। ठीक है, नाहक कत्ल मत करो, ये आठवां हुक्म था। और अब जो है ना वो नवा हुक्म इन आयात के अंदर, माल यतीम को मत खाओ, वला तकरबू माल यतीम, बल्कि मत खाओ नहीं खाली, बल्कि उसके करीब भी मत जाओ। जैसे कि जिना जो है ना उसके बारे में अल्लाह ताला ने यही लफ्ज इस्तेमाल किया, ला तकरबू, करीब भी मत जाओ। ठीक है, यानी कोई ऐसे हरकतें मत करो जो कि वहां तक तुम्हें उस अमल पर अंगेख्ता करती हूँ, उस अमल के ऊपर उभारती हूँ। तो उसी तरीके से माल यतीम के बारे में भी यही हुक्म दिया, वला तकरबू माल यतीम। ठीक है, इल्ला बिल्लती या अहसन, तो उसमें फिर एक्सेप्शन भी बता दी कि अहसन तरीके से जाओ, हत्ता यब लोगा अशुद्ध हो। ठीक है, अब चूंकि अब हम तर्जुमे से आगे बढ़ रहे हैं, तो फरमाया कि हत्ता जब लोग आश्रित हो, हत्ता के वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं। और फिर उसके बाद जो है वो दसवां हुक्म, ईफाए अहद, अहद को ईफा करो, अहद को वफा करो। तो फरमाते हैं वा औफू बिल अहद, और अहद को पूरा करो। इन्नल अहदा काना मसूला, बेशक अहद के बारे में सवाल किया जाएगा। मसूल यानी दिस इज समथिंग विच इज क्वेश्चन, विच विल बी क्वेश्चन। ठीक है, वो अवफुल कैला, और पूरा पूरा नाप करके दो। इदा किल तुम, जब तुम नापने लगो, वजिनो बिल किस्तास मुस्तकीम, तो एक सीधी तराजू के साथ तोलो, यानी तुम्हारी तराजू जो है ना वो खराब नहीं होनी चाहिए, वो किंक्ट नहीं होनी चाहिए, टेढ़ा टेढ़पन उसके अंदर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सीधी तराजू, सही तराजू, सही बैलेंस को इस्तेमाल करो। ज़ालिका खैर, ये यही ज्यादा बेहतर है, वह अहसन तावीला, और अंजाम के एतबार से भी अच्छा है। ठीक है, कि तुम सही से तोल करके दो, पूरा तोलो। तो ये जो औफुल कैन वाला वाला हुक्म हुआ, ये कौन सा हुक्म बना? ये दसवां हुक्म बना। ठीक है, तो इन आयात के अंदर तीन हुक्म है, बहुत ही मुख्तसर अल्फाज के अंदर, कि यतीम के माल की तरफ मत जाओ, और अपने वादों को पूरा करो, और सही नाप करके दो। खुलासा तफसीर में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि उनके बयान कुरान से नकल किया गया है यहाँ पर, तो उसमें फरमाते हैं कि और यतीम के माल के पास ना जाओ, यानी उस पर तसर्रुफ ना करो। ठीक है, तसर्रुफ का मतलब होता है चेंज करना, खर्च करना, आगे पीछे करना, ऊपर नीचे करना, इसको तसर्रुफ करना कहते हैं। तो यतीम के माल में तसर्रुफ ना करो, मगर ऐसे तरीके से जो कि शरअन मुस्तहसन है, जिसकी शरीयत में इजाजत दी गई है। ठीक है, शरण मुस्तहसन का मतलब शरीयत में जिसको अच्छा समझा गया है, उस तरीके से कर सकते हो, वरना नहीं करो। यहाँ तक कि वो अपने सन बुलूग को पहुंच जाए, वो अपने उम्र के ऐसे साल में पहुंच जाए कि जिसके अंदर वो बालिग हो चुका हो। और अहद अहदे जायज को पूरा किया करो, यानी झूठे झूठे नहीं बल्कि नाजायज जो अहद तुमने अगर किसी के साथ किए हुए हैं, तो उनको मत पूरा करो, उनको मत पूरा करो, बल्कि जो जायज अहद हैं उनको पूरा करो। बेशक अहद की कयामत में बाज़पुरस होने वाली है। कयामत का तुम्हारे ऊपर, कि तुम्हारा कयामत के ऊपर एतमाद है, भरोसा है, यकीन है कि नहीं है। वो बिल आखिरते हुम यूकिनून, ईमान वाले तो वो होते हैं जो कि आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो तुम अपने आप को ईमान वाला कहते हो ना, समझते हो ना, तो आखिरत पर तुम्हारा यकीन होगा, यकीनन होगा। ठीक है, तो फिर याद रखो कि आखिरत में जो है ना वो उसके बारे में बासपुरस होगी। क्या लिखा? वादा खिलाफी से क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि किसी से कुछ बात कही के करेंगे और नहीं की? जी, वादा किसी से कोई बात कही के करेंगे, ठीक है ना, तो ये जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ना, इसी को वादा करना कहते हैं, है ना। आप उर्दू तो आपको आती है माशाल्लाह, इतना तो समझ में आ रहा है कि तो किसी से आपने वादा किया, ये जो कही का लफ्ज आपने कह दिया ना, इसमें से वादे के लफ्ज को निकाल करके इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये वादा नहीं हुआ, नहीं, इसी को वादा करना कहते हैं। ठीक है, किसी से वादा किया कि मैं ये करूंगा और नहीं किया, तो वादा खिलाफी हो गई। किसी से वादा किया कि मैं ये नहीं करूंगा लेकिन फिर भी किया, तो ये भी वादा खिलाफी हुई। ठीक है, क्या किया क्या नहीं करना, ये तो फिर इसके अंदर आप कुछ भी शामिल कर लें, लेकिन अगर कोई नाजायज वादा किया है, आप गालिबन लगता है कि पिछली क्लासेस के अंदर नहीं थी, शायद आपने रमजान मुबारक के दरमियान ही हमें ज्वाइन किया, तो पीछे इसकी एक मिसाल ये दी थी कि जैसे किसी ने नामहरम से मुलाकात करने का वादा कर लिया कि फलानी जगह पे आ जाना, मैं वहां पे आ जाऊंगी, ठीक है ना, फिर हम जो है वो रेस्टोरेंट में बैठेंगे, बातें करेंगे, और जो है वो, तो ये नाजायज वादा हुआ, ना महरम से मुलाकात करने का वादा, ये नाजायज वादा हुआ। इस वादे को पूरा करने का अल्लाह ताला हुक्म नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नाजायज वादा करना ही नाजायज था, तो ये वादा ही आपने गलत किया। अब इस गलत वादे को, वादे को पूरा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, हम बचपन में अपनी दोस्त से वफा किए थे, वादा किए थे कि हमेशा साथ देंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्या इसकी भी सजा होगी? जब वादा जो है ना, वो इंसान कोई गलत वादा कर लेता है तो उस वादे को पूरा नहीं करना होता, तो आपने ये गलत वादा किया था। इंडियन फिल्मों के अंदर है ना इसी तरह के वादे होते हैं, और खैर इंडियन फिल्में खाली भी नहीं होती, ये फिर पाकिस्तानी फिल्में और पता नहीं और कौन कौन सी फिल्में हैं ना, तो इसके अंदर यही होता है कि हमेशा साथ रहेंगे और कभी साथ ना छोड़ेंगे, और गाने तो होते ही यही अल्फाज होते हैं उसके अंदर, तो बेचारे जो बच्चे इंडियन फिल्में देख रहे होते हैं, यार खैर आपने हो सकता ना देखी हो, लेकिन आपने उसके बगैर ही माशाल्लाह है इमेजिनरी तौर पर आपने वो इमेजिन कर लिया जो फिल्मों में होता है, तो बहरहाल ये एक फिल्मी डायलॉग से ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर अल्लाह ताला से माफी मांगने, अब बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं ना इंसान, तो अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, ठीक है, माफी ना मांगे तो फिर जो है वो सजा मिलती है, बिल्कुल मिलती है, ठीक है, तो माफी मांग लें, क्या लगता है? फरमाते हैं कि अहद में जो वो तमाम अहद भी दाखिल हैं जो बंदे ने अपने अल्लाह से किए, ठीक है, अल्लाह से किए हुए अहद, और वो भी जो किसी इंसान से किए हैं, ठीक है, यानी अहद जो है वो अल्लाह से किया हुआ अहद पहले आता है, फिर उसके बाद इंसानों से किया हुआ अहद, तो इसी वजह से नाजायज वादे को पूरा नहीं करना, क्यों? इसलिए कि अल्लाह से अहद किया हुआ है, अल्लाह से पहले से अहद किया हुआ है कि मैं आपकी मान करके चलूंगा, ठीक है ना, तो अगर उसको तोड़ा और किसी इंसान से नाजायज वादा कर लिया, तो नहीं, अल्लाह का हक पहले है, अल्लाह का हक पहले है, तो इस वजह से इंसान के साथ उस नाजायज वादे को पूरा नहीं किया जाएगा। अच्छा, और नापने की चीजों को जब नाप कर दो तो पूरा नापो, और तोलने की चीजों को सही तराजू में तोल कर दो, ये फी नफ्सी ही भी अच्छी बात है, यानी इन ऑफ इटसेल्फ ये अच्छी बात है कि भाई सही से नाप करके पूरा हक अदा करो, और अंजाम भी इसका अच्छा है, अंजाम के अतबार से भी, कि आखिरत में तो सवाब मिलेगा इसके ऊपर, और दुनिया में नेक नामी की शोहरत जो तरक्की तिजारत का जरिया है, ठीक है, तो इसका फायदा इंसान को आखिरत में भी होता है और दुनिया में भी होता है, कि उसकी अच्छी शोहरत होती है लोगों में कि हाँ भाई ये जो है ना वो डंडी नहीं मारता, ये जो है वो पूरा तोल करके देता है, तो चलो हम इसी से जा करके खरीदते हैं, इसी से अपनी नेक्स्ट बिजनेस डीलिंग करते हैं, तो इसका कारोबार भी इस तरीके से बहुत अच्छी तरह से चमकता है, और इसको अल्लाह ताला बरकत देते हैं दुनियावी रिस्क के अंदर भी। मारिफ व मसाइल में हजरत ने लिखा था कि इन दो आयतों में तीन हुक्म, नवा दसवा ग्यारह माली हुकूक के मुताबिक मजकूर हैं, साबिता आयात में बदनी और जिस्मानी हुकूक का जिक्र था, ये माली हुकूक का बयान है, ठीक है, तो पीछे जो हमने एक रिविजन कर ही लिया है पीछे कैसे कैसे हुक्म थे, तो अब माली हुकूक में सबसे पहले यतीमों के माल में एहतियात, इनमें पहली आयत में नवा हुक्म यतीमों के अम्वाल की हिफाजत और उनमें एहतियात का है, जिसमें बड़ी ताकीद से ये फरमाया कि यतीमों के माल के पास भी मत जाओ, यानी उनमें खिलाफ शरा या बच्चों के मसलहत के खिलाफ कोई तसर्रुफ ना होने पाए। यतीमों के माल की हिफाजत और इंतजाम जिनके जिम्मे हैं उन पर लाजम है कि इसमें बड़ी एहतियात से काम लें, सिर्फ यतीमों की मसलहत को देख कर खर्च करें, अपनी ख्वाहिश या बेफिक्री से खर्च ना करें। ठीक है, यानी जिस शख्स को वकील बनाया गया है यतीमों के माल का, ठीक है, यानी जिम्मेदार, जरा होल्ड कीजिएगा। जी, तो यतीमों के माल में एहतियात के जो जिनको वकील बनाया गया है तो वो उसके अंदर सिर्फ शरई तसरुफ करें जो शरीयत में इजाजत है जिसकी, और अपने जाती जो ख्वाहिशात हैं उनको वगैरह के ऊपर इस्तेमाल ना करें। सिर्फ यतीमों की मसलहत को देख कर खर्च करें, अपनी ख्वाहिश या बेफिक्री से खर्च ना करें, और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहे जब तक यतीम बच्चे जवान होकर अपने माल की हिफाजत खुद ना कर सकें, जिसका अदना दर्जा 15 साल की उम्र को पहुंचना और ज्यादा 18 साल तक है। ठीक है, यानी यतीम का जो है ना, वो अगरचे के कुरान मजीद के अल्फाज जो हैं लफ्जी तर्जुमा अगर किया जाए तो हत्ता हत्ता यबलुगा, यानी वो बलूगत की उम्र को पहुंच जाए, तो बलूगत को पहुंच जाए तो बालिग होना जो है वो शरीयत की इस तरह के अंदर जो है ना, वो जब बच्चे को एहतलाम हो जाए, ठीक है, तो वो बालिग हो जाता है। ये बलागत की जो है ना वो शरी हद होती है। लेकिन यतीम के माल के कॉन्टेक्स्ट में, इस जमन में जो बलागत का मतलब लिया जा रहा है वो क्या है कि जब वो इंटेलेक्चुअली बालिग हो जाए, जहनी तौर पर बालिग हो जाए, कि वो अपने अच्छे बुरे को पहचानना शुरू हो जाए, अपने अच्छे बुरे को पहचानना शुरू हो जाए, यानी ये वो वाली बलागत नहीं है कि अब उसके ऊपर नमाज फर्ज हो गई, अब उसके ऊपर रोजा फर्ज हो गया, अब उसके ऊपर जकात फर्ज हो गई, नहीं, यहां पर बात किसकी आ रही है, माल की बात आ रही है। ठीक है, तो माल को जो है वो सही जगह पर खर्च करने का शऊर उसको मिल जाए तब उसके हवाले करो माल। ठीक है, तो यहां पर जो है ना वो बदन की बात नहीं हो रही, बदनी इबादात कि भाई अब वो जो है ना वो नमाज पढ़ने के काबिल हो गया, ठीक है, और जकात भी, खैर जकात जो है वो बदनी इबादत तो नहीं कहलाती है, लेकिन जकात उसके माल के ऊपर फर्ज हो जाता है जब उसको एहतराम होता है और वो बालिग हो जाता है, जिस्मानी तौर पर बालिग हो जाता है। तो यहाँ पर जो बलूगत है वो माल के खर्च करने में एहतियात का वो कशूर हासिल हो जाए, तो वो 15 साल, 18 साल, ज्यादा से ज्यादा 18 साल, 15 साल कम से कम। और आजकल के दौर में जब वो अगर वीडियो गेम खेलने वाला, नाउज बिल्ला, उस यतीम को जो है ना वो ख्याल नहीं रखा, उसकी माँ ने ख्याल नहीं रखा या उसके वकील ने ख्याल नहीं रखा और उसको वीडियो गेम्स के ऊपर लगा दिया या उसको जो है ना वो किसी और बुरी आदत के अंदर लगा दिया, तो फिर तो उसने 18 साल की उम्र में भी इस काबिल नहीं होना कि वो अपने माल को जो है वो सही जगह पे इस्तेमाल कर सके, बल्कि वो फिर इसी के अंदर खर्च करेगा, है गेम्स खरीद करके लेकर आएगा और जो है वो क्या उल्टी सीधी चीजों के अंदर अपना पैसा खर्च करेगा। तो 18 साल से भी फिर बढ़ा करके जब वकील जो है ना वो समझे कि अब ये इस काबिल हो चुका है कि ये अपने माल को उड़ाएगा नहीं, तब उसको खर्च करे। तो इस वजह से एक जगह पर हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का कॉल जो है ना वो 25 साल की उम्र भी है, 25 साल की उम्र तक भी। बहरहाल मकसद यहाँ पर यह है कि उसका माल जाया ना। ठीक है, तो वकील भी फिर ऐसा ही होना चाहिए कि जिसको इस बात की फिक्र हो, जो यतीम का खैर ख्वाह हो। ठीक है, अपने पास तो खर्च कर नहीं सकता, ठीक है, खुद तो खर्च कर नहीं सकता, रखा हुआ है माल, यहाँ पर तो यतीम के ऊपर खर्च करने, यतीम के हवाले करने की बात हो रही है सारी। नाजायज तरीके पर किसी का माल भी खर्च करना जायज नहीं। यहाँ यतीमों का खसूसियत से जिक्र इसलिए किया कि वो तो खुद कोई हिसाब लेने के काबिल नहीं, दूसरों को उसकी खबर नहीं हो सकती। जिस जगह कोई इंसान अपने हक का मुतालबा करने वाला ना हो वहां हक अदा का मुतालबा अशद हो जाता है, इसमें कोताही आम लोगों के हकूक की नस्बत से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यानी जहां पर असबाब हो ना, ठीक है ना, असबाब हैं अपना ख्याल रखने के लिए किसी के पास, अल्लाह ताला क्या क्या मामला होता है कि हाँ भी तुम्हारे पास तो खुद सलाहियत है, तुम्हारे पास तो खुद जो है ना वो अकल है और ताकत है और तुम्हारे पास जो है वो वसाइल हैं, तो तुम अपना काम जो है वो अपने असबाब से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ऐसे शख्स का कोई माल चुरा ले तो उसको उसको भी सजा मिलेगी। ये नहीं कि ताकतवर का माल चुराने के ऊपर कोई सजा नहीं है, क्योंकि भाई ताकतवर के पास तो बड़े असबाब हैं, तो उसका माल चोरी करना जो है ना वो जायज हो गया, नहीं उसका भी माल चोरी करना चोरी कहलाएगा, उसके ऊपर भी चोरी की सजा होगी, ठीक है। लेकिन वो सजा जितनी होगी ना उससे कई गुना ज्यादा बड़ा बड़ी सजा उस वक्त होगी जब कोई यतीम बच्चा था जिसके पास अपने माल को माल की हिफाजत के असबाब नहीं थे, ना उसके पास ताकत है, ना उसके पास जो है वो अकल समझ है, ना उसके पास दीगर कोई वसायल हैं जिनके जरिए से वो अपने माल की हिफाजत कर सके, तो असबाब नहीं है उस यतीम बच्चे के पास। अब उस यतीम का माल चुराने के ऊपर जो है ना वो अमीर का माल चुराने के मुकाबले में ज्यादा बड़ी सजा होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर असबाब नहीं है। तो जब असबाब नहीं होते हैं तो फिर मुसब्बिबुल असबाब जो है ना वो यानी ज्यादा शद्दोमत के साथ जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना, ज्यादा शद्दोमत के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। उस मामले में फिर ज्यादा डरना चाहिए, ठीक है। तो ये उसूल जो है ना ये बड़ा अहम उसूल है कि असबाब का ना होना जो है ना वो अल्लाह ताला की इन्वॉल्वमेंट का ज्यादा बड़ा सबब बन जाता है, और जहां पे असबाब होते हैं तो वहां पे अल्लाह ताला जो है ना वो थोड़ा सा यानी एक एक हद तक समझने की खातिर ये थोड़ा सा जो है ना वो बैक रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना, बैक पे रह करके अपना रोल तो प्ले करते हैं, अल्लाह ताला ही अमल करने वाले हैं, अल्लाह ताला ही फाइल हकीकी हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर असबाब मौजूद हैं तो वहां पर पीछे, और जहां पर असबाब नहीं होते तो वहां पर अल्लाह ताला जो है ना वो फुली इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे बदर के मैदान में मुसलमानों के पास बिल्कुल असबाब नहीं थे और काफिरों के पास पूरे के पूरे असबाब थे, तो वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना वो हजारों फरिश्तों की के साथ इन्वॉल्व हुए, ठीक है ना, हजारों फरिश्तों की जो है वो मदद मुसलमानों के लिए भेजी है, ठीक है। यही उसूल सारे मामला पर चलता है, चाहे वो इज्तिमाही हो चाहे वो इनफरादी। बहरहाल आगे फरमाते हैं कि मुआहिदात की तकमील व तामील का हुक्म। 10वां हुक्म अहद पूरा करने की ताकीद है। अहद दो तरह के हैं, एक वो जो बंदा और अल्लाह के दरमियान है, जैसे अजल में बंदे का ये अहद कि बेशक अल्लाह ताला हमारा रब है, ठीक है। इस अहद का लाजमी असर उसके अहकाम की अताअत और उसकी रजा जोई होता है, ठीक है। अब ये दो आलमे अरवाह के अंदर हम सब ने कहा कि आप ही हमारे रब हैं, बला या रब, बस हमने कहा है कि आप ही हमारे रब हैं, हमने कोई वादा नहीं किया, क्योंकि कुरान मजीद के अल्फाज में तो उसकी सराहत नहीं है, और ना जो है वो हमने बाकी कोई हदीस मुबारका में कोई सराहत पढ़ी कि बंदों ने कहा कि हम आपका ही हुक्म मानेंगे, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका हुक्म मानेंगे, नहीं ऐसे कोई अल्फाज नहीं है कि आलम अरवा में हम सब ने जो है ना वो अल्लाह ताला से ये वादा किया था अल्लाह हम आप ही का हुक्म मानेंगे, ठीक है। तो फिर क्यों कहा जाता है कि हम सब ने अल्लाह ताला से वादा किया है, इसलिए क्योंकि लफ्ज रब जो है ना इस रब के लफ्ज के इकरार में कि हाँ आप ही हमारे रब हैं, ठीक है ना, तो ये उससे कंक्लूड करता है, ये उससे नतीजा निकलता है कि आप ही का हुक्म माना जाएगा, ठीक है, और आप ही की रजा जो है वो मकसूद होगी, ठीक है। अब इसके अंदर मजीद तफसील की जरूरत नहीं है कि बाकायदा एक्सप्लिसिटली जो है ना वो ये भी कहा जाए कि हम आपका हुक्म माने, भाई रब मान लेना इतना काफी है, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा जो है ना वो अपने माँ बाप से कहे कि हाँ आप ही मेरे माँ बाप हैं, ठीक है, तो अब क्या मतलब है कि जब माँ बाप हैं आप ही मेरे माँ बाप हैं, आप ही मुझे जो है वो पालते हैं पोसते हैं, आप ही जो है मेरी सारी जरूरियात को पूरा करते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर मुझे अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आप ही का हुक्म मानूंगा, मैं पड़ोस वाली आंटी का हुक्म नहीं मानूंगा, ठीक है। मैं जो हूं ना वो ऊपर के मंजिल पर रहने वाले अंकल का हुक्म नहीं मानूंगा, बल्कि मैं आप ही का हुक्म मानूंगा, ये कहने की जरूरत नहीं है। बस माँ बाप को माँ बाप मान लिया, अपना पालने पालने वाला मान लिया, लाजिम हो गया कि अब उन्हीं का हुक्म माना जाए, ठीक है। कंपेयर टू ऊपर वाले अंकल और पड़ोस वाली आंटी, कंपेयर टू क्या मतलब, ये नहीं कि अल्लाह का हुक्म नहीं माना जाए, ना रसूल का हुक्म माना जाए, ना जो है वो उलमाए कराम का हुक्म माना जाए, बल्कि अम्मी अब्बू का हुक्म माना जाए, नहीं, उनकी माँ बाप से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह की माँ बाप से कोई कंपैरिजन नहीं है, अल्लाह ताला तो माँ बाप को बनाने वाले हैं, अल्लाह ताला ने तो हमें माँ बाप दिए हैं, है ना। तो इस वजह से अल्लाह का हुक्म तो सबसे बुलंद है, और नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म भी अल्लाह ही का हुक्म होता है, तो नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म भी माँ बाप के हुक्म से बुलंद है। और उलमाए कराम का हुक्म क्या होता है भाई, उलमाए कराम जो होते हैं वो वही होते हैं जो कि नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म हमें समझा रहे होते हैं, ठीक है ना, जो कि अल्लाह का हुक्म होता है। तो उलमाए कराम का हुक्म जो होता है वो वही हुक्म होता है जो कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म होता है, इस वजह से उलमाए कराम का भी माँ बाप के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसी वजह से ऊपर के अंकल और बराबर की आंटी की मिसाल देकर के समझाया गया है कि नहीं, जब माँ बाप मान लिया उनको, तो फिर ना मैं उन आंटी की बात मानूंगा, ना मैं फलाने अंकल की बात मानूंगा, ना मैं फलाने की दोस्त की बात मानूंगा, बल्कि मैं तो माँ बाप की बात मानूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने उसको उनको माँ बाप मान लिया है अपना। यही मामला जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ है कि उनको मान लेना ही काफी था कि आप हमारे रब हैं। तो उसके अतात और उसकी रजा जोई, ठीक है, जो रब होता है उसके अतात और रजा जोई लाजमी होती है। ये अहद तो हर इंसान ने अजल में किया, यानी बिल्कुल अपनी इब्तिदा में जब अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया, वह दुनिया में वो मोमिन हो या काफिर हो, हर इंसान ने किया, चाहे वो दुनिया में आने के बाद उसने इस्लाम कबूल किया हो या ना किया, ना या ना किया हो, ऊपर तो वादा सब करके आया। दूसरा अहद मोमिन का है जो शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह के जरिए किया गया है, जिसका हासिल अहकाम इलाहिया की मुकम्मल इत्तबा और उसकी रजा जोई है, ठीक है। तो इंसानों में फिर दो कैटेगरीज होती हैं, एक ईमान वाले और एक इनकार वाले। तो जो ईमान वाले होते हैं तो अब उनके ऊपर ना डिटेल्ड अहकामात पर अमल करना ये भी लाजम हो जाता है, जबकि जो इनकार करने वाले होते हैं काफिर, तो उनके ऊपर डिटेल्ड अहकामात इसलिए नहीं लागू होते क्योंकि वो ईमान ही नहीं लेकर के आए। क्या मतलब कि अगर कोई काफिर है तो उसके ऊपर जो है ना नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, उसके ऊपर ज़कात देना रोज़ा रखना फर्ज नहीं है, क्यों, इसलिए कि वो तो ईमान ही नहीं लेकर के आया। अगर ईमान लाएगा तब उसके बाद ये चीजें फर्ज होंगी, ठीक है ना। तो उसका ईमान ना लाना जो है ना यही उसको जो है ना वो जहन्नुम का मुस्तहिक बना देता है। अब जहन्नुम में जाएगा तो वहां पे उसको सारी सजाएं मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो अलग अलग से नमाज की सजा और रोजे की सजा वो मिले ना मिले, लेकिन जहन्नुम में तो उसमें चले ही जाना है। दूसरी कसम अहद की वो है जो इंसान किसी इंसान से करता है, जिसमें तमाम मुआहदात सियासी, तिजारती और मुआमलाती शामिल हैं जो अफराद या जमातों के दरमियान दुनिया में होते हैं। सियासी मुआहदात जो ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटीज जिनको कि आजकल मुल्क कहा जाता है, तो उनके दरमियान सियासी मुआहदात होते हैं, ठीक है। तजारती मुआहदात जो है वो इंसानों के दरमियान, एक मुल्क के अंदर भी अगर दो इंसानों के दरमियान तजारती मामला हो जाए, या मुख्तलिफ मुल्कों के दो लोगों के दरमियान कोई तजारती मामला हो सकता है। और मुआमलाती, ये अलग से क्यों लिखा, ये मामला जो है वो हमारे घरेलू मामला और हमारे आपस में मुआशरती मामला, यानी जो तजारती मामला नहीं है, जो सियासी मामला नहीं है ना, तो वो फिर सारे के सारे इस तीसरी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, जिनको मामलाती मुआहदात कहा, मामलाती मुआहदात, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए जो है ना फलानी चीज ला करके दूंगा, बीवी ने शोहर से मामला कर लिया, शोहर ने बीवी से मामला कर लिया, मैं आज आपको मैं फ्लावर्स ला करके दूंगा, ठीक है ना। अब ये कोई तजारती मामला कोई थोड़ी है, ये कोई सियासी मामला कोई थोड़ी है, ठीक है। ये तो बीवी के साथ प्यार मोहब्बत वाला मामला है कि जी मैं आज आपको फूल ला करके दूंगा, ठीक है। तो इसको फिर इस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा कि मैं कि ये मुआमलाती मुआहदात हैं। पहली कस्म के तमाम मुआहदात को पूरा करना इंसान पर वाजिब है, यानी अल्लाह ताला के साथ जितने वादे किए हुए हैं ना सबको पूरा करना वाजिब है। और दूसरी कस्म में जो मुआहदात खिलाफ शरा ना हो उनका पूरा करना वाजिब, और जो खिलाफ शरा हो उनका फरीक सानी को इत्तला करके खत्म कर देना वाजिब। ठीक है, जिस मुआहदे का पूरा, तो अब ये जो जुमला हजरत ने लिखा है कि जो शरी तौर पर जायज नहीं है खिलाफ शरा है, तो उसमें क्या करना होता है कि दूसरे जिसके साथ वादा किया है ना तो उसको इत्तला दे करके उस वादे को खत्म कर देना होता है कि भाई मैं आपके साथ ये किया वो वादा पूरा नहीं कर सकता क्योंकि ये वादा जो है ना मैंने खिलाफ शरिया कर लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही जो हमारी मिसाल पीछे थी कि भाई किसी ने एक नामहरम मर्द के साथ मुलाकात करने का वादा कर लिया, तो अब जब वो उनको पता चला कि भाई ये तो खिलाफ इशारा था तो मैं तो इस वादे को पूरा नहीं कर सकती, तो क्या उसको इत्तला देनी चाहिए? नहीं, उसको जो है वो उस नामहरम मर्द को इत्तला नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए भाई? यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि फरीक सानी को जो है ना वो इत्तला दे करके वादा खत्म करना वाजिब है, तो फिर इत्तला क्यों नहीं देनी चाहिए? जी, या आप अगर इसका जवाब दे रहे हैं कुछ आपकी तरफ से भी हो ना, इत्तला क्यों नहीं देनी चाहिए? नामहरम मर्द से मुलाकात का वादा ये खिलाफ शरा वादा था, तो इसको खत्म कर देना वाजिब है। लेकिन खत्म करने का तरीका क्या बताया? कि उसको इत्तला दो कि मैं ये वादा पूरा नहीं कर सकती। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं, इत्तला भी देना जो है वो नहीं दिया जाएगा। इतना क्यों नहीं दिया जाएगी इस मामले में? इतना क्यों नहीं दी जाएगी? ये वादा ही गलत है, इसलिए इतना की जरूरत नहीं। नहीं, आप तो सुन ही नहीं लगता है बात। भाई क्या लिखा हुआ है सामने को? आपके सामने किताब भी नहीं होगी शायद, तो किताब में लिखा हुआ है कि जो आपने गलत वादे किए हैं तो उनको खत्म करने का तरीका ये है कि आप अगले बंदे को इतला दें कि मैं आपसे वादा पूरा नहीं कर सकती। ठीक है, अल्लाह का हुक्म है ना वैरम से बात भी नहीं करनी। ठीक है, माशाल्लाह, सही, ये इसका जवाब है। ठीक है, कि ना महरम को इत्तला देना भी खिलाफ शरा है। ठीक है ना, ना महरम से बातचीत करना ही खिलाफ शरा है। ठीक है ना, तो इस वजह से जो है ना ये जो इत्तला देने का जो काम है ना ये भी चूंकि शरीयत के खिलाफ है। शरीयत का हुक्म क्या है? ला तक़रबुज़ ज़िना, और ज़िना का पहला जीना क्या होता है? बातचीत कर, बातचीत करना। ठीक है ना, जब बातचीत करते हैं ना तब मुलाकात का दिल चाहता है। और इसके ऊपर क्या दलाइल हमारे मशाइख देते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल, राइट, कि किसी दूसरे इंसान ने अल्लाह ताला को देखने की तमन्ना नहीं जाहिर करी, है ना। और भी तो अंबिया थे ना एक से एक अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, ठीक है ना, लेकिन अल्लाह को से मुलाकात की जो है ना वो किसी ने डिमांड नहीं करी, किसी ने जो है वो तमन्ना जाहिर नहीं करी, नबी अलैहिस्सलाम तक ने नहीं करी। नबी अलैहिस्सलाम को तो बगैर तमन्ना जाहिर किए हुए जो है वो ऊपर बुला लिया गया। ठीक है ना, एक मूसा अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो क्यों? क्योंकि बातचीत जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से करी और किसी ने भी नहीं करी। अल्लाह ताला ने इन्हीं को बस ये तौफीक अता फरमाई। बेचारे बेचारे तो खैर नहीं कह सकते, नाउज़ुबिल्लाह, बेअदबी भी है, और बेचारे का लफ्ज़ तो उसके लिए कह रहा था जो कि वाकई बेचारा हो। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी थे कि जो बात नहीं कर सकते थे, राइट, जो हक लाते थे, जिनकी जुबान के अंदर लुकनत थी, जो अपना मुद्दा नजर जो है ना वो बतमाए नजर जो है वो बयान नहीं कर सकते थे, अल्लाह ताला ने उनको उठाया और अपने साथ वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा, अपने साथ कलाम की सआदत अता फरमाई। ठीक है ना, जिसको कलाम ही करना नहीं आता था। ठीक है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना वो ऐसे उठाते हैं, छोटों को, गिरोपड़ों को उठाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे मशाइख देते हैं इस बात को प्रूफ करने के लिए। और बाकी है कि बेशुमार मुशाहदात भी इंसान के सामने होते ही हैं कि जहाँ पे बातचीत शुरू होती है तो फिर उसके बाद फिर मुलाकात का जी जाता है। तो इस वजह से ना नामहरम से तो कोई कम्युनिकेशन ही जायज नहीं है। इल्ला ये कि शदीद जरूरत, यानी जो के यानी मामलात के लिए जो है ना जिसकी जरूरत पड़ जाए, ठीक है, उसके अलावा बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं। तो उस वजह से ये जो उसूल हजरत ने यहाँ पे लिखा है ना, इसमें भी एक्सेप्शन है कि नहीं ना मैडम को इतला वितला देने की कोई जरूरत नहीं। एनीवे फरमाया कि अगर कोई फरीक पूरा ना करे तो दूसरे को हक ये है, अच्छा, जिस मुआहदे का पूरा करना वाजिब, अगर कोई फरीक पूरा ना करे तो दूसरे को हक है कि अदालत में मुराफ़ा करके उसको पूरा करने पर मजबूर करे, यानी अपने इस मसले को जो है ना वो अदालत में लेकर के जाए, तो हक ये हासिल है दूसरे फरीक को, अदालत को इन्वॉल्व करे, केस करे उसके खिलाफ वगैरह, ठीक है। मुआहदे की हकीकत ये है, यानी मुआहदा आप कहते किस चीज़ को है? ठीक है, तो अब डिफाइन कर रहे हैं कि मुआहिदा क्या होता है, कि दो फरीक के दरमियान किसी काम के करने या ना करने का अहद हो जाए, ठीक है, मैं ये काम करूंगा या ये मैं काम नहीं करूंगा, ये अहद हो गया, वादा हो गया बस। और जो कोई शख्स किसी से यकतरफा वादा कर लेता है कि मैं आपको फुला चीज दूंगा या फुला वक्त आपसे मिलूंगा या आपका फुला काम कर दूंगा, उसका पूरा करना भी वाजिब है, ठीक है। जैसे आपने अपने दोस्त के साथ जो है वो वादा कर लिया कि जी मैं सारी जिंदगी आपका साथ दूंगी, आपके साथ रहूंगी, ठीक है, तो आपके दोस्त ने आपको मजबूर तो नहीं किया था या आपके दोस्त ने आपसे डिमांड तो नहीं किया था कि आप मेरे साथ ही वादा करें, लेकिन कर लिया, ठीक है। तो ये तो इस किस्म का वादा था जो कि फिल्मी डायलॉग से जिसकी ज्यादा कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि हकीकतन ये मुमकिन ही नहीं है, ठीक है ना। खिलाफ शरा तो बाद में बात आएगी ना, ये तो खिलाफ इम्कान भी है कि भाई हमेशा तो कोई किसी के साथ रह ही नहीं सकता, लेकिन इस तरह की बातें जो है ना वो करने ही नहीं चाहिए, करने ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका पूरा करना भी वाजिब है, और बाज हजरात ने उसको भी अहद के इस मफहूम में दाखिल किया है, लेकिन एक फर्क के साथ कि मुआहदा फरीकैन की सूरत में अगर कोई खिलाफ वर्जी करे तो दूसरा फरीक उसको बजरिए अदालत तकमील मुआहदे पर मजबूर कर सकता है, यानी दोनों ने एक दूसरे से जब वादा किया ना, तो फिर तो अगर वो वादा कोई एक तोड़ता है तो फिर अदालत में ये केस ले जाया जा सकता है, लेकिन अगर सिर्फ एक ने दूसरे से वादा कर लिया और दूसरे ने पहले से वादा नहीं किया तो उस सूरत में क्या किया जाएगा, उसको यकतरफा वादा कहते हैं। तो कहते हैं कि यकतरफा वादे को अदालत के जरिए से जबरन पूरा नहीं करा सकता, ठीक है। हाँ, बिला उज्र शरई के किसी से वादा करके जो खिलाफ वर्जी करेगा वो शरअन गुनाहगार होगा, ठीक है। हदीस में उसको अमली निफाक करार दिया गया है, यानी जो वादा करके वादे को तोड़ देना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसको मुनाफिकत की निशानी करार दिया, अमली निफाक करार दिया, ठीक है। अमली निफाक का क्या मतलब है, अमली निफाक का क्या मतलब है कि इसका अमल जो है ना वो मुनाफिकीन के अमल जैसा है, ये है अमली निफाक का मतलब, इसका अमल मुनाफिकीन के अमल जैसा है, ठीक है। एक दूसरा निफाक होता है जिसको के अकीदे का निफाक, अकीदे का निफाक, ठीक है ना। ये अकीदे का निफाक क्या होता है, अकीदे के निफाक का मतलब ये होता है कि इसका इसके दिल के अंदर जो है ना वो ईमान ही नहीं है इसके दिल, ठीक है ना, इसके दिल में ईमान नहीं है, ये नबी अलैहिस्सलाम की किसी एक बात का कम अज कम किसी एक बात का इनकार करता, ठीक है। तो इसकी वजह से, इनकार करने की वजह से ये अंदर से मुनाफिक हो चुका है, ठीक है ना, ये अंदर से काफिर हो चुका है, एक्चुअली अंदर से काफिर हो चुका है। अच्छा, तो भाई ये तो काफिर हो गया, तो फिर उसको मुनाफिक क्यों कह रहे हैं, मुनाफिक उसको इसलिए कह रहे हैं कि ऊपर से जो है ना ये जो आमाल कर रहा है ना ये ईमान वालों के आमाल होते हैं, जैसे नमाज पढ़ता है, मस्जिद जाता है, उमरा करता है ना, शादी करने के लिए जो है वो मस्जिद में जा करके निकाह करके शादी करता है, ठीक है, और जो है वो और ज़कात भी देता है, हज भी करके आ जाता है, रोजा भी रखता है, तो ऊपर से आमाल क्या है, पूरे के पूरे आमाल जो है ना इसके मुसलमानों वाले आमाल, लेकिन दिल में इसके ईमान नहीं। क्यों ईमान नहीं? क्योंकि इसने नबी अलैहिस्सलाम की किसी एक बात का इनकार कर दिया कि नहीं, मैं इसको नहीं मानता, ठीक है ना। तो अब ये अंदर से काफिर है, ऊपर से मुसलमान है, इसको निफाक कहते हैं, ठीक है। इसको अकीदे का निफाक कहते हैं, ठीक है। जबकि अमली निफाक किसको कहते हैं कि अंदर से भी मोमिन है, मानता है सारी बातों को कि हाँ नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया वो सच है, हक है, ठीक है ना। जुबान से भी इकरार करता है, दिल में भी इसका कि तस्दीक करता है, लेकिन अमल इसका जो है ना वो खराब है, यानी कमजोर है इसका ईमान। ये झूठ बोल देता है, ये वादा खिलाफी कर देता है, ये गालम गलोच कर देता है, ये बदतमीजियां कर देता है, ठीक है। लेकिन अंदर से ईमान वाला है, ठीक है। तो अब ये जो इसके अमाल है ना, इसको जो है वो फिर अमली निफाक कहा जाएगा, इसको अकीदे का निफाक नहीं कहा जाएगा, ठीक है। किसी को कोई अगर सवाल हो आज की ओवरऑल क्लास के बारे में तो पूछ सकते हैं, वरना टाइम खत्म हो चुका है, तो इस वजह से मुझे आ गए। बाकी आज की क्लास चूंकि इतने अरसे के बाद शुरू हुई थी, तो इसमें काफी सारी रिविजन भी हो गई थी। आगे जो है वो फिर हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो अगर किसी को कोई सवाल है या कोई कॉमेंट है तो पूछ लें, वरना क्लास में। ठीक है, फिर हम यहाँ क्लास खत्म करते हैं। वाखिर दुआ अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।